अभिमन्यु, इप्सिता, समर्थ और अर्पिता चारों उनके फ्लैट में थे और वे सब एक साथ काफी यादगार समय बिता रहे थे। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता और समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, काफी रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अर्पिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई साहब थोड़ी देर और रुकिए ना। अभिमन्यु ने अर्पिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं अर्पिता, अभी हमें जाने दो, क्योंकि मासा वहां पर अकेली हैं और घर पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, हमें अब जाना पड़ेगा। अर्पिता समर्थ की तरफ देख रही थी, तभी समर्थ ने अपनी पलकें झपकाई और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। तभी इप्सिता अर्पिता के पास आई और उसने अर्पिता को गले लगाते हुए कहा, अर्पिता मत करिए, हम आपसे मिलते आते रहेंगे, और वैसे भी अभी तो आप लोग यहीं हैं ना, क्योंकि आपके हनीमून में तो अभी टाइम है। जैसे ही अर्पिता ने इप्सिता की ये बात सुनी, अर्पिता शर्मा गई। इप्सिता ने उसे कसकर अपनी गले लगाते हुए कहा, बाय, अच्छा हम चलते हैं। समर्थ ने अभिमन्यु को हग किया और अर्पिता उन दोनों के जाने की बात से थोड़ी सी इमोशनल हो गई। समर्थ ने अर्पिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वे दोनों वहां से बाहर निकल आए। इप्सिता और अभिमन्यु थोड़ी ही देर में राजमहल पहुंचे। जैसे ही वे लोग राजमहल पहुंचे, उन लोगों ने देखा कि मासा वहीं हॉल में ही बैठी हुई थी। जैसे ही उन दोनों को आते हुए देखा, वो अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गईं। अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा आप अभी तक सोई नहीं? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात पूछी, मासा उसकी बात को इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। इप्सिता समझ गई कि मासा को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि हम अर्पिता से मिलने गए थे। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, जाइए अभिमन्यु, जाकर मासा से बात करिए, वो आपसे नाराज हैं, और अभी अगर आपने उनसे बात नहीं की तो उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, हम ये नहीं चाहते। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। तभी वो मासा के पीछे पीछे जाने लगा। उसने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा एक मिनट रुकिए और हमारी बात तो सुनिए। मासा ने अभिमन्यु के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, क्या बात करनी है आपको अभिमन्यु, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं, इस राजमहल के राजा सा बन गए हैं, तो हमें नहीं लगता आपको हमारी किसी भी बात की या हमारी सलाह की जरूरत होगी, क्योंकि अब तो आप इतने बड़े बड़े फैसले खुद ही ले लेते हैं। जैसे ही मासा ने ये बात कही, अभिमन्यु समझ गया कि मासा उसे किस बात के लिए ताने दे रही हैं। अभिमन्यु ने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा तो क्या आपको लगता है हमने जो फैसला लिया वो गलत था? मासा ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखा और मासा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो अभिमन्यु ने ही माता को अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मासा अगर हम चाचा सा चाची सा को यहाँ से दूर ना भेजते तो वो बार बार किसी ना किसी वजह से हमारे और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करते, आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि वो कैसे हैं। मासा ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हमें आपके इस फैसले से कोई परेशानी नहीं है, आपको आगे भी जो करना हो आप करिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। इप्सिता मासा की उखड़ी हुई बातों को सुनकर समझ गई थी कि वो अभी भी अभिमन्यु से नाराज हैं, इसीलिए वो इस तरह से उससे बात कर रही हैं। इप्सिता ने मासा की तरफ देखकर उनके पास आते हुए कहा, मासा आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अभिमन्यु ने जो भी फैसले लिए हैं बहुत सोच समझ के लिए हैं, आप खुद अपने बेटे को जानती हैं कि वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेते, तो फिर अब आप उनके फैसले के खिलाफ बोल रही हैं। मासा ने अपना हाथ उठाया और इप्सिता की तरफ देखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। इप्सिता भी बोलते बोलते चुप हो गई और मासा के इस बिहेवियर से अभिमन्यु को काफी बुरा लगा। वो कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अभिमन्यु। इप्सिता ने अभिमन्यु को कुछ भी और बोलने नहीं दिया और मासा चुपचाप वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। अभिमन्यु ने इप्सिता से कहा, नहीं हमें मासा से बात करनी ही होगी, वो आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती, वैसे भी गलती हमने की है तो वो हमें जो चाहे वो बोल सकती हैं, आपको नहीं। इतना बोलकर अभिमन्यु सीधा मासा के रूम की तरफ जाने लगा। इप्सिता ने सोचा कि वो उनके साथ रूम में जाए, लेकिन इप्सिता ने खुद को रोकते हुए कहा, नहीं अभिमन्यु, अगर हम आपके साथ मासा के रूम में गए तो पता नहीं मासा शायद हमसे और ज्यादा नाराज ना हो जाए, इसलिए इप्सिता मासा के रूम में ना जाकर सीधे अपने रूम में चली गई। अभिमन्यु काफी देर बाद मासा से बात करके अपने रूम में आया तो उसने देखा इप्सिता फोन पर किसी से बात कर रही थी। अभिमन्यु वहीं पर रुक गया। उसने इप्सिता को सिर्फ इतना कहते हुए सुना, नहीं हम पहले ही ये फैसला ले चुके हैं, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल कट कर दिया। तभी अभिमन्यु अंदर आया और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ इप्सिता, किससे बात कर रही थी आप? इप्सिता ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस नंदिनी से बात कर रहे थे। खैर आप हमें ये बताइए कि मासा ने क्या कहा, आपने उनसे बात की? अभिमन्यु ने उदास होते हुए कहा, मासा हमसे अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने हमारे किसी भी बात का ठीक से कुछ जवाब नहीं दिया। इतना बोलकर अभिमन्यु वहीं चुपचाप बैठ गया। इप्सिता उसके बगल में बैठते हुए बोली, आप परेशान मत होइए अभिमन्यु, देखिएगा मासा बहुत जल्दी आपसे बात करने लगेंगी। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा वो पहले की तरह हो जाएंगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी और उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहा, अब अगर आप इस तरह से इतने उदास होकर बैठेंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु के बाजू को कसकर पकड़ा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, और वैसे भी आप तो इस महल के राजा सा है ना, तो आपको तो अब इन सारी चीजों की आदत डालनी होगी, है ना। अभिमन्यु इप्सिता की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मासा हमसे कभी भी आज तक नाराज नहीं हुई, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं कि वो हमसे बात ही ना कर रही हो। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए हम राजा नहीं बनना चाहते थे। हमें पता था हम ये सब नहीं संभाल पाएंगे, कि सब हमारे बस की बात ही नहीं है। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही उसने अपना सर नीचे झुका लिया। इप्सिता अभिमन्यु को उदास देखकर खुद भी अपसेट हो रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो अभिमन्यु को कैसे चीयर अप करे, लेकिन वो अभिमन्यु को ऐसे मायूस और सेल्फ डाउट करते भी नहीं देख सकती थी। इप्सिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अगर आप ऐसे मुंह लटका कर बैठेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, और सिर्फ आप ही ये सब कुछ अच्छे से संभाल सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। इतना बोलकर इप्सिता अभिमन्यु के बिल्कुल करीब गई और अभिमन्यु के फोरहेड पर अपने होंठ रखकर बड़े प्यार से किस करते हुए कहा, आप हमें मुस्कुराते हुए सबसे अच्छे लगते हैं, आपके चेहरे पर ये टेंशन तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनी तो अभिमन्यु मुस्कुराया और इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा।
इप्सिता ने दोबारा अभिमन्यु के गाल पर किस करते हुए कहा, अभी आप मासा के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा ना अर्पिता कितनी ज्यादा खुश थी समर्थ के साथ, और यहाँ घर का माहौल भी अब पहले से कितना अच्छा लगने लगा है चाचा चाची के चले जाने से। हम जानते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि चाचा सा चाची सा का यहाँ पर रहना ठीक नहीं था। वैसे भी अब अगर वो अपने महल में रहेंगे तो उन्हें यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप अपने फैसले पर बिल्कुल भी डाउट मत करिए। आपने जो भी फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया